एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी पहली मेजबान और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात करेंगे माइकल गाज़ेनिगा के उस काम की जिसने हमें मतलब ये समझने में मदद की कि ये सिर के अंदर रखा हुआ 3 पाउंड का जो अंग है वो कैसे हमारी दुनिया, हमारी पहचान यानी हमारे स्व या सेल्फ का एहसास रचता है।
हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, है ना? आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें ये समझना कि हम सोचते कैसे हैं, फैसले क्यों लेते हैं और ये मैं की भावना आती कहाँ से है, ये खुद को बेहतर जानने के लिए बहुत जरूरी हो गया है।
सही बात है। मतलब ये सवाल कि क्या हम वाकई अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं या कोई और ही ड्राइवर सीट पर बैठा है, गाज़ेनिगा का काम इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है।
तो चलिए सबसे पहले उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने ये सारी बहस छेड़ी, माइकल एस गाज़ेनिगा।
हाँ, गाज़ेनिगा। उन्हें अक्सर संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान का पितामह या फादर ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहा जाता है। वो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सेंटा बारबरा में सेज सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ माइंड के निदेशक हैं और मतलब दशकों से दिमाग के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं।
उनका नाम लेते ही मेरे जहन में तो सबसे पहले उनका वो अनोखा काम आता है, स्प्लिट ब्रेन मरीजों पर किया गया शोध।
हाँ बिल्कुल, ये वो लोग थे जिनकी मिर्गी के गंभीर दौरे रोकने के लिए एक खास सर्जरी हुई थी, कॉर्पस कैलोसम को काटने वाली सर्जरी।
कॉर्पस कैलोसम मतलब दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से को जोड़ने वाली नसें।
हाँ, नसों का एक मोटा बंडल, उसको काट दिया जाता था तो इससे दोनों हिस्सों का जो सीधा संपर्क था वो टूट गया।
अच्छा,
और इसी टूटे हुए संपर्क ने गाज़ेनिगा को एक कह सकते हैं एक अनोखी खिड़की दी दिमाग के अंदर झांकने की। उन्होंने दिखाया कि कैसे दिमाग के दोनों हिस्से अलग अलग सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लगभग दो अलग दिमागों की तरह।
दो अलग दिमाग? तो फिर ये सवाल उठा होगा कि अगर दिमाग के दो हिस्से हैं तो हमें एक ही मैं का एहसास क्यों होता है?
एग्जैक्टली। और गाज़ेनिगा की खूबी ये भी है कि वो इन मुश्किल कॉम्प्लेक्स वैज्ञानिक बातों को बड़े सरल अंदाज में समझाते हैं, आम लोगों के लिए भी।
तो अगर हम गाज़ेनिगा के काम का सार निकालें, मतलब उसका निचोड़, तो वो क्या होगा? शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिसे हम अपनी ठोस एकीकृत चेतना या सेल्फ समझते हैं वो शायद उतनी ठोस है ही नहीं। ये काफी हद तक दिमाग की बनाई एक कहानी है, एक तरह का भ्रम।
हाँ, ये थोड़ा हिला देने वाला विचार तो है।
वो कहते हैं कि दिमाग को एक अकेला बॉस नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा नहीं है।
तो फिर कैसा है? बिल्कुल, ये अलग अलग स्पेशलिस्ट मॉड्यूल का एक झुंड है, एक टीम की तरह, जो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ज्यादातर बिना किसी सेंट्रल कमांड के। आप सोच सकते हैं जैसे सरकार में अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना?
हाँ, जैसे वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय।
बिल्कुल, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और मिलकर देश चल रहा है। दिमाग कुछ वैसा ही है।
अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो बड़ा सवाल, मैं कौन हूँ? अगर कोई एक बॉस नहीं है तो फिर ये मैं कौन है जो सब अनुभव कर रहा है?
हाँ, और गाज़ेनिगा का जवाब इस पर बड़ा क्रांतिकारी है। वो कहते हैं आप वो कहानी हैं जो आपका दिमाग लगातार खुद को सुना रहा है, अपने कामों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, बाहर से मिलने वाली जानकारी के बारे में।
एक कहानी जो दिमाग खुद को सुना रहा है।
हाँ, और इस कहानी को गढ़ने का जिम्मा है दिमाग के बाएं हिस्से, लेफ्ट हेमिस्फीयर में बैठे खास सिस्टम का, जिसे गाज़ेनिगा ने नाम दिया इंटरप्रेटर, मतलब व्याख्याकार।
इंटरप्रेटर,
ये इंटरप्रेटर हमारे बिखरे हुए अनुभवों, कामों और भावनाओं को लेकर एक मतलब भरी सुसंगत कहानी बुनता रहता है, और यही कहानी हमें स्व का एहसास दिलाती है।
तो ये हमारी इस धारणा को चुनौती देता है कि हम सोच समझकर अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं।
बिल्कुल, ये असल में न्यूरॉन्स की दुनिया से चेतना के एहसास तक का सफर समझने की कोशिश है एक तरह से।
चलिए अब जरा इन विचारों को और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से, दिमाग हकीकत कैसे बनाता है। गाज़ेनिगा कहते हैं कि दिमाग एक बंद कमरे जैसा है,
बंद कमरा मतलब?
मतलब बाहर की दुनिया से उसका सीधा कोई संपर्क नहीं, उसे बस हमारी इंद्रियों, आंख, कान, नाक वगैरह से बिजली के सिग्नल मिलते हैं, बस यही इनपुट है।
अच्छा, तो मतलब जो दुनिया हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो वैसी की वैसी बाहर नहीं है, वो दिमाग का बनाया हुआ एक मॉडल है, एक इंटरप्रिटेशन है।
बिल्कुल, सोचिए ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में, वो सीधी रेखाएं जो टेढ़ी दिखती हैं, या वो हिलती हुई तस्वीरें जो असल में स्थिर हैं?
हाँ हाँ दिखें।
ये क्या दिखाते हैं? यही कि हमारा अनुभव सीधे बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि दिमाग की प्रोसेसिंग से तय होता है।
या फिर वो फैंटम लिम्ब का अनुभव, जब किसी का हाथ या पैर कट जाता है, फिर भी उन्हें उस अंग में खुजली या दर्द महसूस होता रहता है।
हाँ, ये तो बहुत अजीब है। अंग तो है नहीं, पर एहसास है।
बिल्कुल। या सिनेस्थीजिया, जहां लोगों को अक्षर देखकर रंग दिखते हैं या आवाज सुनकर स्वाद महसूस होता है, ये सब दिमाग के अंदरूनी कनेक्शंस की वजह से है। बाहरी सच्चाई तो शायद एक ही है, पर दिमागी मॉडल अलग अलग हो सकते हैं।
तो अगर दिमाग अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहा है, तो फिर हमारे सचेत नियंत्रण का क्या? क्या हम वाकई अपने फैसलों और कामों के मालिक हैं?
यहां झागरनी का और भी चौंकाने वाली बात बताते हैं। हमारे दिमाग की ज्यादातर गतिविधियां, दिल धड़काने से लेकर गाड़ी चलाते हुए गियर बदलने तक, सब ऑटोमैटिक, अचेतन रूप से होती हैं, कॉन्शियस कंट्रोल के बिना।
ज्यादातर मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसे हम मैं समझते हैं, वो अक्सर पिक्चर में सबसे आखिर में आता है।
हाँ, कुछ ऐसा ही, जैसे कोई फैसला हो गया, काम शुरू हो गया, और फिर हमें बताया गया कि हाँ, तुमने ये करने का फैसला किया है। गैज़ानिगा इसकी तुलना सरकार के प्रेस सेक्रेटरी से करते हैं,
अच्छा,
जो फैसले होने के बाद बस उनकी घोषणा करता है।
सही पकड़ा। इसका एक क्लासिक सबूत बेंजामिन लिबिट के मशहूर प्रयोगों से मिलता है। उन्होंने लोगों को एक बटन दबाने के लिए कहा जब भी उनका मन करे,
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में।
और साथ ही उनके दिमाग की गतिविधि और उनके इरादा करने के एहसास के समय को नोट किया।
और नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये कि दिमाग में बटन दबाने की तैयारी वाला सिग्नल उनके ये महसूस करने से कि अब मैं बटन दबाना चाहता हूँ, कुछ मिलीसेकंड पहले ही शुरू हो गया था।
पहले, यानी दिमाग ने तय कर लिया था। चीतना को खबर थोड़ी देर से मिली, सोचिए जरा।
है ना कमाल की बात? तो फिर जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे टाइपिंग या बाइक चलाना, शुरू में कितना ध्यान देना पड़ता है। हर हरकत सोच समझ कर करनी पड़ती है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते हैं, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। उंगलियां खुद ब खुद सही बटन दबाती हैं, पैर अपने आप ब्रेक लगा लेते हैं, है ना?
हाँ हाँ होता है।
वो काम अचेतन मन के हवाले हो जाता है। हमारा दिमाग ज्यादातर ऑटो पायलट मोड पर ही चलता है, ताकि सचेत मन जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके।
और दिमाग की ये जो बनावट है, वो भी इस ऑटो पायलट में मदद करती है। गैज़ानिगा इसे मॉड्यूलर ब्रेन कहते हैं।
मॉड्यूलर ब्रेन?
यानी दिमाग एक बड़ा शहर है जिसमें अलग अलग विभाग या मॉड्यूल हैं, और हर विभाग का अपना खास काम है। कोई चेहरे पहचानने में माहिर है, कोई भाषा समझने में, कोई रास्ता याद रखने में।
अच्छा, और ये विभाग काफी हद तक अपनी अपनी धुन में काम करते हैं। यहीं पर वो स्प्लिट ब्रेन मरीजों वाली बात फिर से अहम हो जाती है।
हाँ, वो कनेक्शन कटने वाली बात।
हाँ, जब दोनों हिस्सों का कनेक्शन कट गया, तो गैज़ानिगा दिखा पाए कि कैसे एक हिस्सा कुछ देख सकता है या महसूस कर सकता है, और दूसरे हिस्से को उसकी भनक तक नहीं लगती।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, जैसे एक प्रयोग में मरीज के सिर्फ दाएं हेमिस्फीयर जो देख सकता है पर बोल नहीं सकता, उसको एक तस्वीर दिखाई गई, मान लीजिए एक चम्मच की,
ठीक है।
और फिर उसे कुछ चीजों में से उस देखी हुई चीज को बाएं हाथ से उठाने को कहा गया। बाएं हाथ को दाएं हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है।
और उसने उठा लिया?
उसने सही चम्मच उठा लिया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने क्या उठाया, तो उसका बाया हेमिस्फीयर, जो बोल सकता है पर जिसने चम्मच देखा नहीं था, कहता मुझे नहीं पता,
कमाल है।
या कभी कभी वो कोई अंदाजा लगाता। यह साफ दिखाता है कि जानकारी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा रही थी, दो अलग अलग जागरूकताएं एक ही खोपड़ी में।
तो फिर वही सवाल कि अगर दिमाग इतने अलग अलग हिस्सों में बटा है और ज्यादातर काम ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हमें ये एकता और नियंत्रण का एहसास कैसे होता है?
यहां आता है गैज़ानिगा का हीरो, द इंटरप्रेटर,
इंटरप्रेटर।
व्याख्याकार।
हाँ,
हाँ, ये इंटरप्रेटर, जो मुख्य रूप से बाएं हेमिस्फेयर में रहता है, एक कहानीकार की तरह है। इसका काम है हमारे बेतरतीब कामों, भावनाओं और विचारों को जोड़कर एक मतलब वाली सुसंगत कहानी बनाना।
मतलब ये लगातार पूछता रहता है, ऐसा क्यों हुआ?
बिल्कुल, और अगर कोई सीधा जवाब ना मिले तो ये एक बना लेता है, ताकि कहानी चलती रहे, ताकि चीजें समझ में आएं।
वो क्लासिक स्प्लिट ब्रेन प्रयोग याद है, जिसमें मरीज के दाएं हेमिस्फीयर को कमांड दिया गया वॉक।
हाँ हाँ बिल्कुल,
मरीज उठकर चलने लगा।
हाँ,
अब पूछा गया बाएं हेमिस्फीयर से, जो बोल सकता है, तुम क्यों चल रहे हो?
और उसने ये नहीं कहा पता नहीं बस शरीर चलने लगा, नहीं, उसने तुरंत एक वाजिब लगने वाला कारण गढ़ दिया,
क्या कहा उसने?
जैसे मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूं। ये इंटरप्रेटर का काम था जो हो रहा है उसे समझाना, उसे एक कहानी में फिट करना, भले ही वो कहानी असलियत से थोड़ी अलग हो।
मतलब हमारे अंदर बैठा एक कहानीकार है जो लगातार हमें हमारे ही कामों के मतलब समझा रहा है।
हाँ, और मरीज पीएस का केस भी यही दिखाता था, जहां उसका बायां दिमाग लगातार उसके दाएं दिमाग के कामों के लिए दिलचस्प कहानियां बनाता रहता था।
ये इंटरप्रेटर सिर्फ स्प्लिट ब्रेन में ही नहीं, हम सब में काम करता है।
बिल्कुल, हम सब अपने कामों और भावनाओं के लिए लगातार वजह तलाशते और बनाते रहते हैं।
लेकिन क्या वो वजह हमेशा असली होती हैं? ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, और ये हमें लाता है फैसले लेने की प्रक्रिया पर। क्या हमारे फैसले पूरी तरह तार्किक होते हैं?
लगता तो नहीं है।
हाँ, गैज़ानिगा और दूसरे शोधकर्ता बताते हैं कि ऐसा नहीं है। फैसले लेना असल में हमारे तेज सहज भावनात्मक सिस्टम,
गट फीलिंग वाला सिस्टम,
हाँ, और धीमे विचारशील तार्किक सिस्टम के बीच एक रस्साकशी जैसा है।
और अक्सर जीत किसकी होती है?
भावनाओं की।
अक्सर एंटोनियो डेमासियो के उन मरीजों को याद करें जिनके दिमाग के भावनात्मक केंद्र क्षतिग्रस्त हो गए थे। हाँ, आपने बताया था।
वो लोग आईक्यू टेस्ट में तो अच्छा करते थे, लेकिन असल जिंदगी में बहुत बुरे फैसले लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी विकल्प के साथ कोई गट फीलिंग या भावनात्मक वजन महसूस नहीं होता था। सब कुछ एक जैसा लगता था, कोई मोटिवेशन ही नहीं था।
अच्छा,
और वो प्रसिद्ध ट्रॉली प्रॉब्लम भी इसी कश्मकश को दिखाती है ना?
हाँ बिल्कुल, एक तरफ भागती हुई ट्रॉली है जो 5 लोगों को मारने वाली है। आप एक लीवर खींचकर उसे दूसरी पटरी पर डाल सकते हैं जहां सिर्फ एक आदमी है।
ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लीवर खींच देंगे, 5 जाने बचाना एक से बेहतर है, ये लॉजिकल लगता है।
सही, लेकिन अगर सीन बदल दें, अब आप एक पुल पर खड़े हैं, नीचे वही 5 लोग हैं, आपके बगल में एक भारी भरकम अजनबी खड़ा है, अगर आप उसे धक्का दे दें तो वो गिरकर ट्रॉली रोक देगा और 5 लोग बच जाएंगे।
अब ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, मैं धक्का नहीं दूंगा।
दूंगी।
बिल्कुल, नतीजा वही है, एक मरेगा 5 बचेंगे। पर अब सीधा किसी को नुकसान पहुंचाने का जो भावनात्मक बोझ है, वो तार्किकता पर हावी हो जाता है।
ये दिखाता है कि हमारी नैतिक फैसले भी सिर्फ ठंडे तर्क पर आधारित नहीं होते, भावनाएं एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं।
सही बात है, और हमारा दिमाग सिर्फ अंदरूनी गणनाएं और फैसले ही नहीं लेता, ये बाहरी दुनिया, खासकर सामाजिक दुनिया से जुड़ने के लिए भी बना है।
हाँ, गैज़ानिगा सामाजिक मस्तिष्क की बात करते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारा दिमाग इसी सामाजिक जाल में नेविगेट करने के लिए विकसित हुआ है।
बिल्कुल, इसके सबूत हर जगह हैं, जैसे मिरर न्यूरॉन्स नाम के खास ब्रेन सेल्स होते हैं।
मिरर न्यूरॉन्स वो क्या करते हैं?
जब हम किसी और को कोई काम करते देखते हैं, तो हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जैसे हम खुद वो काम कर रहे हों। ये हमें दूसरों के इरादों और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। सहानुभूति का आधार है ये।
अच्छा, यानी हम दूसरों को देखकर सीखते और महसूस करते हैं।
हाँ, और जब हम किसी अपने को दर्द में देखते हैं, तो हमारे दिमाग के वो हिस्से भी सक्रिय हो जाते हैं जो खुद दर्द महसूस होने पर होते हैं। हम सचमुच दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं।
और सामाजिक अकेलापन या रिजेक्शन?
स्टडीज दिखाती हैं कि ये दिमाग में उसी तरह का दर्द पैदा करता है जैसा शारीरिक चोट से होता है। ये मजाक नहीं है।
ये सब दिखाता है कि हमारा दिमाग सामाजिक जुड़ाव, सहयोग और समूह में रहने के लिए कितना हार्डवायर्ड है।
बिल्कुल, बेशक इसी में हम बनाम वो वाली मानसिकता भी शामिल है जो समूहों के बीच तनाव का कारण बन सकती है, वो भी इसी का हिस्सा है।
और इस पूरी कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
हाँ, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये दिमाग की खुद को बदलने की अद्भुत क्षमता है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है।
बदल सकता है। कैसे?
ये हमारे अनुभवों, हमारे विचारों, हमारे कामों के जवाब में लगातार अपने कनेक्शंस बदलता रहता है, खुद को रीवायर करता रहता है।
जैसे
लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का उदाहरण मशहूर है। उन्हें शहर के हजारों घुमावदार रास्ते याद रखने पड़ते हैं।
स्टडी में पाया गया कि उनके हिपोकैम्पस
दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त और नेविगेशन में अहम है,
हाँ वही,
वो औसत लोगों से काफी बड़े थे।
वाह,
दिमाग ने उस चुनौती के जवाब में खुद को बदल लिया।
वाह, या अगर किसी को स्ट्रोक या चोट लगती है,
हाँ,
तो अक्सर दिमाग के दूसरे हिस्से क्षतिग्रस्त हिस्से का काम संभालना सीख लेते हैं।
जी,
ये न्यूरोप्लास्टिसिटी ही है।
इसका मतलब है कि सीखना, बदलना, बुरी आदतों को छोड़ना, नई स्किल डेवलप करना, ये सब संभव है, क्योंकि हमारा दिमाग बदल सकता है।
बिल्कुल,
ये ग्रोथ माइंडसेट का आधार है।
हाँ,
ये बहुत उम्मीद देता है। लेकिन इसके साथ ही नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या हमें दिमाग की क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं या तकनीकें इस्तेमाल करनी चाहिए?
हाँ, कहाँ पर इलाज खत्म होता है और एनहेंसमेंट या क्षमता वृद्धि शुरू होती है, ये सब न्यूरोएथिक्स के बड़े सवाल हैं।
बिल्कुल,
तो इस पूरी गहरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या थीम क्या निकलती हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं? मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी थीम है एकीकृत चेतना का भ्रम। हमारा ये जो पक्का यकीन है कि हम एक अकेले, सुसंगत, मैं हैं, ये शायद दिमाग की सबसे बड़ी कलाकृति है, असलियत नहीं।
हाँ, और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब शायद अपने अंदर के विरोधाभासों को लेकर थोड़ी नरमी बरतना, जब हमारा मन बदलता है या हम किसी बात पर दुविधा में होते हैं।
तो ये कोई कमी नहीं, बल्कि दिमाग के अलग अलग हिस्सों की खींचतान का नतीजा हो सकता है, ये सामान्य है।
सही कहा। दूसरी बड़ी थीम है इंटरप्रेटर की कहानी। हमारा दिमाग लगातार हमारे कामों और भावनाओं के लिए वजहें गढ़ता रहता है।
ये हमें खुद से पूछने पे मजबूर करता है, क्या मैं जो कारण बता रही हूँ वो असली है या मेरे इंटरप्रेटर की बनाई हुई एक सुविधाजनक कहानी। थोड़ी आत्म जागरूकता बढ़ती है इससे।
बिल्कुल। तीसरा, अचेतन का दबदबा। दिमाग का ज्यादातर शो पर्दे के पीछे चलता है, ऑटोमेटिक मोड पर। हमारा सचेत मैं तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है।
ये हमारी आदतों की ताकत को समझने में मदद करता है ना, और ये भी कि क्यों सिर्फ इच्छा शक्ति से उन्हें बदलना मुश्किल होता है।
हाँ, उन ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स को रिवायर करना पड़ता है। और चौथी थीम हमारी सामाजिक प्रकृति। हम अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं।
हमारा दिमाग कनेक्शन, सहानुभूति और समूह के लिए बना है। ये रिश्तों और समुदाय की अहमियत बताता है, और ये भी कि क्यों अकेलापन इतना तकलीफदेह हो सकता है।
हाँ, ये हमारी जैविक जरूरत है। तो गैजेनिका के काम से कुछ ऐसे विचार निकलते हैं जो दिमाग में घूम के रहते हैं, उन्हें सीधे शब्दों में कहें तो।
पहला विचार, बाएं दिमाग का इंटरप्रेटर बिना रुके वजह ढूंढता है, कहानी बनाता है ताकि दुनिया समझ में आए, चाहे वो वजह असली हो या ना हो। हमारी सेल्फ की फीलिंग इसी कहानी से बनती है।
हाँ, दूसरा, हम कोई एक अकेली चीज नहीं है। हमारे अंदर कई सिस्टम्स हैं जो कभी कभी एक दूसरे से लड़ते भी हैं। वो एक मैं वाला आइडिया ही शायद पूरी तरह सही नहीं है। हम सब चलते फिरते विरोधाभासों का मजमा है।
ये तो मजेदार है। तीसरा,
तीसरा, दिमाग पहले काम करता है, चेतना बाद में आती है। वो बटन दबाने वाला प्रयोग याद है? यह हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा की धारणा पर ही एक बड़ा सवालिय निशान लगाता है।
क्या हम वाकई अपनी मर्जी के मालिक हैं? ये सवाल तो परेशान कर सकता है।
बिल्कुल। और चौथा, एक बड़ा व्यावहारिक विचार। हाँ, दिमाग एक मशीन की तरह नियमों से बंधा हो सकता है, निर्धारित प्रणाली, लेकिन जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच का है, समाज का बनाया हुआ नियम है।
अच्छा, मतलब?
मतलब दिमाग ऑटोमेटिक हो सकता है, पर इंसान समाज में जिम्मेदार माने जाते हैं। ये विज्ञान और सामाजिक जरूरत के बीच संतुलन बनाने जैसा है। जिम्मेदारी दिमाग में नहीं, लोगों के बीच के रिश्ते में होती है।
ये एक अहम नुक्ता है। तो ये सब जानने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो खुद को बेहतर समझकर, है ना?
हाँ,
अगर हम जानते हैं कि अंदर अलग अलग आवाजें हैं, तो हम अपने कन्फ्यूजन या गलतियों पर खुद को कम कोसेंगे, थोड़ी आत्मकरुणा बढ़ेगी।
बिल्कुल। दूसरा, बेहतर फैसले लेने में। अगर पता है कि भावनाएं और अचेतन बायस या पूर्वाग्रह असर डालते हैं, तो हम बड़े फैसलों से पहले रुककर सोच सकते हैं।
रात भर सोचने दो वाली कहावत।
हाँ, उसके पीछे अब विज्ञान है। और जब बहुत गुस्से में या दुखी हों, तो बड़े फैसले टाल देना ही बेहतर है।
तीसरा, दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति। अगर हम समझें कि किसी का व्यवहार शायद जानबूझकर बुरा नहीं, बल्कि उसके दिमाग के ऑटोमैटिक पैटर्न या हालात का नतीजा हो सकता है,
तो शायद हम उसे ज्यादा आसानी से माफ कर पाएं, रिश्तों में समझ बढ़ सकती है।
सही कहा। और चौथा, सीखने और आदतें बदलने में, न्यूरोप्लास्टिसिटी।
हाँ, ये हमें बताती है कि बदलाव मुमकिन है। अभ्यास, ध्यान, नई चीजें सीखने से हम सचमुच अपने दिमाग को बदल सकते हैं। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। यह हमें कोशिश करते रहने की प्रेरणा देता है।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमारा स्व या मैं का एहसास दिमाग की शायद सबसे शानदार, सबसे जटिल रचना है। एक कहानी जो वो खुद को सुनाता है ताकि इस उलझी हुई दुनिया में जी सके। ये विनम्र करने वाला विचार है।
और मेरे लिए ये जानना कि दिमाग कैसे काम करता है, उसके प्रति हैरत को कम नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। ये उस अविश्वसनीय बायोलॉजिकल मशीन के लिए सम्मान पैदा करता है जो हमारे हर पल के अनुभव को रच रही है। शायद हम सब अपने अंदर काम करते उस इंटरप्रेटर को थोड़ी और जिज्ञासा से देख सकते हैं कि वो कैसे लगातार हमारे जीवन को मतलब देने की कोशिश कर रहा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।